भगवत कृपा से ही पूर्ण होते हैं। यद्यपि समस्त कर्म भगवान से अभिन्न है तो भी भगवान निर्देश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः, अन्य सारे कर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आओ। जब हम भगवान के इस आदेश को स्वीकार करते हैं तो हम वास्तव में सुखी बनते हैं, किंतु जब तक हम अपनी इंद्रियों के अनुसार कर्म करते हैं तब तक हम भौतिक जीवन में बने रहते हैं, किंतु जो ही हम भगवान के वास्तविक दिव्य आदेश के अनुसार कर्म करते हैं त्यों ही हम आध्यात्मिक पद पर प्राप्त हो जाते हैं। भक्ति के कार्यकलाप भगवान के प्रत्यक्ष अधीन है, जैसा कि नारद पंचरात्र में कहा गया है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋकेश सेवनम भक्ति उच्यते। जब मनुष्य सारी भौतिक उपाधियों को त्याग कर भगवान के अधीन होकर कर्म करता है तो उसमें आध्यात्मिक जीवन का पुनः संचार होता है। इसे स्वरूपेन अवस्थिति कहा जाता है, जिसका अर्थ है अपनी मूल स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना। यही मुक्ति का असली विवरण है। तो बहुत बड़ा दर्शन फिलोसॉफी भगवान के महान पार्षद, जिनका द्वादश भागवतों में स्थान है और जिनकी आयु अति अल्प है, लेकिन भक्ति के उच्च शिखर पर जिनका स्थान है, ऐसे प्रहलाद जी बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम सुद गोस्वामी ने कहा कि निगम कल्पतरो गलितम फलम, वेद रूपी शाखा वृक्ष का ये परिपक्व फल है। वेदों में अनेक प्रकार के उपदेश है और वेदों का जो गुह्य तत्व है, जो धर्म है या सार वस्तु है कृष्ण भक्ति, उन तक सभी लोग पहुंच नहीं पाते हैं। वेद पढ़ने के बाद भी शास्त्र जालम महारण्यम, कभी लोग कहते हैं कि ये जो शास्त्र है एक महान वन के समान है, घने जंगल में अगर कोई व्यक्ति प्रवेश कर जाए तो बाहर निकलना असंभव है। ऐसे ये वेद जो है उसमें इतने उपदेश, इतने कर्तव्य, इतने ज्ञान और इतने कर्मकांड, क्या क्या बताया है कि मानव जीवन पूरा उलझ सकता है। पहले तो पढ़ ही नहीं सकते और पढ़ेंगे तो समझ ही नहीं सकते, और समझ भी लिए तो जीवन में उतार नहीं सकते, तब तक तो काल खा जाएगा पढ़ते पढ़ते। इसीलिए श्री भगवान ने करुणा करके उस उपनिषद वेदों का सार गीता अमृत का दान दिया कि भाई सार ग्रहण कर लो, सीधा मक्खन खाओ, है ना, कहां इतना पढ़ने जाओगे, मूल बात पकड़ो। और इसीलिए जो ये वेद है, अथर्वणः साम यजुर् आदि और जितने भी 108 उपनिषद है, इनका पूरा कंक्लूजन एसेंस सार जो है इसका जो भाष्य है श्रीमद् भागवतम। इसीलिए सारे वेद की उपमा अगर वृक्ष से दी जाए, जो वृक्ष में अनेक प्रकार की टहनी होती है, पत्ते होते हैं और फल फूल होते सब होते हैं वृक्ष में, तो ये सारे वेद रूपी जो वृक्ष है उसका परिपक्व फल जो है ये भागवत है। भागवत में लिखा है कि जैसे वृक्ष होता है उसमें पूर्ण रस होता है, जैसे वृक्ष के मूल में भी रस है, उसकी छिलके छाल में भी रस है, उसकी डाली टहनी में भी रस है, उसके पत्ते में भी, सब में रस होता है, लेकिन वृक्ष का जो सार रस है वो फल में होता है। जैसे आम, आप सीधा आम के पत्ते चबाएंगे या उस आम वृक्ष की छिलका खाएंगे रस नहीं, लेकिन कैरी मैंगो में उसका जो वास्तविक वृक्ष का सार है वो फल में होता है, कोई भी वृक्ष हो चाहे। तो ये वेद रूपी अगर वृक्ष है तो उसका जो सार फल है ये भागवत। जैसे इक्षुदंड हम लोग खाते ना, अभी गन्ना आप लोग खाते होंगे, गन्ने का सीज अभी है ना, ठंडी में गन्ना बहुत होता है, इक्षु, तो उससे क्या बनता है, गुड़ बनता है, फिर मिश्री बनता है ना, तो गन्ने का पूरा, अभी गन्ने में तो कितना ये भी है, गांठ भी होती है, छिलके भी होते हैं, मुंह भी है ना, पूरा ये हो जाता है खाते वक्त, लेकिन सीधा मिश्री खाए तब शरबत बना के उसका पूरा एसेंस सार उसमें है। इसी तरह पूरे वेद रूपी वृक्ष का जो सार फल है यह श्रीमद् भागवत। सीधा। इसलिए सुख जी ने वहां पर कहा है पीबोत, किसको पीने को कहा है, भावुका रसिका और भावुका। वैष्णव के ये बहुत बड़े महान गुण माने जाते हैं, साधना भक्ति को जब परिपूर्ण करता है तब भाव स्तर पे पहुंचता है भक्त, जिनको कृष्ण कथा के अलावा कुछ सुझता ही नहीं, कृष्ण कथा ही जिनका प्राण बन चुका है, कृष्ण नाम संकीर्तन ही जिसका जीवन हो चुका है, इसको रसिक कहते हैं, उसको भावुक कहते हैं सरल शब्दों में। और हम और आप साधना तो करते हैं लेकिन उस साधना में भाव सम्मिलित होना चाहिए। भावेन परमं ज्ञानम भाव अत्र अवलंबते, ऐसा लिखा गया है वेदों में कि भाव की भक्ति में बड़ी मुख्यता है ना। नहीं तो देखो एक संत उदाहरण देते हैं, अगर आप कर रहे हो कुछ लेकिन भाव मतलब अंदर से हृदय से आपको रुचि नहीं है, लालसा नहीं है, उत्साह नहीं है और उस क्रिया में आप प्रयुक्त है तो फल में देरी हो जाएगी, सिद्ध होने में समय लग जाएगा और हो सकता है कभी कभी फल ना भी मिले, ये देखा जाता है। और उसके लिए दृष्टांत देते हैं कि गंगा जले किम न वसंती मत्स्य, ये गंगा जल परम पवित्र माना जाता है, उसका स्पर्श किया, उसका पान किया, उसमें स्नान किया, उसके पाप धुल जाते हैं, उनको भक्ति प्राप्त होता है, ऐसा है ना, इसलिए हम लोग जाते हैं गंगा स्नान के लिए। लेकिन मछली तो गंगा में ही रहती है तो क्या वो शुद्ध हो गई, क्या उसको आप पूजा करेंगे मछली की, क्या उसके शरीर की दुर्गंध गई, क्या उनको भक्ति मिल गई, जबकि गंगा या वसंती, हम लोग तो गंगा में स्पर्श करके 25-50 साल में एक बार जाके आ जाते फिर भी अपने आप को पवित्र मानते हैं और संत भी हमको पवित्र कहते हैं, है ना, वेद भी कहता है। तो मछली तो गंगा में ही रहती है फिर भी उनको कोई पवित्र नहीं कहता। देवालय जैसे ये मंदिर है, आप लोग आए हैं, दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रसाद लेते हैं, है ना, तो आप देखे होंगे कबूतर चकली वो लोग भी आते हैं, पक्षी लोग भी यहां पर मन जाते, फिर उनको तो कोई भगत वैष्णव नहीं कहता, उनको तो कोई प्रभु जी नहीं कहता, हम लोग को कहते हैं माता जी प्रभु जी, वो लोग भी आते हैं ना यहाँ पर मंदिर में आते हैं। देवालय किम न वसंती खगा, आते हैं, क्या कमी है उनमें, गंगा जी में रहते हुए भी मछली में क्या कमी है, देवालयों में सब आते हैं पशु पक्षी फिर भी उसमें क्या कमी है, क्योंकि ये भगवान है, हम उनके है, ऐसी बुद्धि ऐसा भाव उसमें नहीं, और इसीलिए पूर्ण फल को नहीं प्राप्त कर पाते। वस्तु शक्ति का प्रभाव, उसको फल नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, कुछ तो सुकृति होगा ही, लेकिन जो वैष्णव भाव और श्रद्धा से साधना करके अपना संबंध मानते हुए करता है वो जो फल प्राप्त करता है उतना वो नहीं कर पाता। इसीलिए उद्देश्य संदेश यह है, मैसेज यह है कि हम जो भी करते हैं साधना जप भागवत श्रवण सेवा, उसमें राग हमें भाव भाव अर्थात प्रेम और गुरु आज्ञा से करने का प्रयास करना चाहिए उत्साहपूर्वक, तब हम उस फल को ज्यादा प्राप्त कर पाएंगे। और प्रेम भक्ति जहां है ते बाय फोर्स भजन हो रहा है तो विनाश नहीं, अविद्या का विनाश नहीं होगा, प्रेम भक्ति जहां होगा वहां हमारी अविद्या अज्ञान नष्ट हो जाएंगे ना। प्रेम भक्ति होना चाहिए ना, भाव प्रेम भक्ति, प्रेम मतलब अनुराग से श्रद्धा से उत्साहपूर्वक, तब हम फल को प्राप्त कर पाते हैं। देखिए जिसकी बात यहां पर चल रही है और जिसके मुख से ये श्लोक बोला गया है वहां पर सभी देवता खड़े हैं, भगवान शिव खड़े हैं, ब्रह्मा जी है, सिद्ध चारण गंधर्व प्रजापति नाग इंद्र आदि सभी देवता खड़े हैं और साक्षात भगवान नरसिंह रूप में वहां पर विराजमान, और ये 5 साल के बालक प्रहलाद जिनकी आयु केवल 5 वर्ष है अभी और इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं जिनको देवता और भगवान सब सुन रहे हैं, दम है ना बात में, कुछ वजन है। क्यों ऐसी बात, क्योंकि वो वही बोल रहा है, वो सत्य का निरूपण कर रहा है, जो कवियों ने वेदों में भगवान ने जो कहा वही बात को यथार्थ अनुभव करके बोल रहा है प्रहलाद महाराज। किसकी कृपा से, नारद जी की कृपा से, गुरु कृपा से, गुरु वैष्णव कृपा से उनमें ये दिव्य बुद्धि है प्रहलाद जी में। जयति जगति माया काया धवस्ते ब्रह्मपुत्र नारद जी के दिव्य वचनों से और उनकी शरणागति से, उनके वचनों के ऊपर दिव्य श्रद्धा होने से प्रहलाद महाराज यथार्थ तत्व को जान चुके। दो भागवतों की कथा है भागवत में, जो छोटे आयु में ध्रुव और प्रहलाद है ना, और ये दोनों नारद के शिष्य हैं, नारद जी की कृपा इन पर हुई है। और क्यों हुई है? क्योंकि उनकी भक्ति में उत्साह, दृढ़ता और नारद जी के प्रति शरणागति भाव था। उन्होंने जो कहा वो एक्सेप्ट, सीधा ग्रहण किया इन दोनों ने, इसीलिए पूर्ण सत्य से अवगत हो चुके हैं ये दोनों। जिस सभा में बच्चों को बोलने का आदेश, यहां पर कोई इस बच्चे को बोलने नहीं दिया जाता है, उसको माइक्रोफोन दिया जाता है कि आप वेद पढ़िए, और वहां पर ब्रह्मा जी ने उसको कहा कि जो ब्रह्मा हमारे संप्रदाय के चार मुख वाले, चार वेद के ज्ञान वाले, वो भी बाजू में हट गए और इनको कहा कि आप बोलिए। कृष्ण तत्व वेता सही गुरु कृष्ण तत्व के अभिज्ञ व्यक्ति थे, जानकार थे प्रहलाद महाराज, गुरु कृपा से, नारद जी की परम कृपा से। और दूसरा गुण क्या था प्रहलाद में? एक तो गुरु के वचनों में श्रद्धा और आज्ञा पालन, उसका एक कर्तव्य से पूर्ण अवगत थे। और दूसरा गुण था कि नित्य भगवान के स्मरण में रहते थे। स्मरण भक्ति के आचार्य कौन है? प्रहलाद स्मरण है ना। तो जिसकी चित्त वृत्ति में भगवत लीला स्फुरित रहती है, भगवत नाम स्मरण, भगवत गुण स्मरण, चिंतन चलता रहता है, उनका चित्त जो है, उनकी बुद्धि जो है वो पवित्र हो जाती है, भोग वासना आदि त्रिगुणों से अतीत हो जाती है उनकी बुद्धि। और ऐसी बुद्धि में भगवान जो सच्चिदानंद है वो पकड़ में आ जाते हैं, उनका रूप, उनका लीला, वैभव, तत्व पूर्ण प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि निर्मल बुद्धि थी, पवित्र उनका अंतकरण हो चुका था। किसके कारण? कृष्ण स्मरण के कारण। प्रहलाद महाराज पूर्ण शरणागत भक्त थे, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ये गुण था प्रहलाद। कोई भी विरोधा कृष्ण ने इतना आतंक किया, लेकिन प्रहलाद महाराज को पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। ये शरणागति का एक लक्षण है ना, छह लक्षण होते हैं शरणागति में, उसमें एक लक्षण है कि कृष्ण हमारी रक्षा निश्चित अवश्य करेंगे, और ये था उसमें, और इसीलिए भगवान करते थे। कितने आतंक, कितने दुख, लेकिन प्रहलाद जी बच जाते थे। और अंत में जब मारने के लिए खड़ग उठा लिया तो भगवान साक्षात प्रकट हो गए। अब तक तो अपरोक्ष, परोक्ष रूप में कर रहे थे, अब प्रत्यक्ष आ गए सामने और स्तुति कर रहे हैं, भगवान के इस गुणों को याद कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। और तो इन प्रसंग से, इतने बातों से हमें एक बात जीवन में धारण करनी है वैष्णव। कल हमारे भक्ति सिद्धांत महाराज जी का तिरोभाव तिथि हमने मनाया, मनाया ना, कितने भक्तों को तो पता भी नहीं होगा कि था, क्या हाँ कह रहे हैं। सच में बोलिए कितने लोगों ने मनाया? और क्योंकि हम थोड़ी वैष्णव कैलेंडर देखते हैं, हम तो अपना देखते हैं, शादी किस का है, मुझे कहाँ जाना है, मेरा अपॉइंटमेंट कहाँ है, हमको ये थोड़ी मतलब है कौन वैष्णव आचार्य का कब तिथि है कि क्या है, बहुत ही, क्योंकि हम माया में भूल जाते हैं ये सारी बात, इसीलिए भक्तों के संग में रहना पड़ता है ताकि हम माया से ऊपर रहे, नहीं तो माया में ही है त्रिगुणातीत माया, इसमें यही आया है यस्मिन यतो यरहि येन यस्य यस्मात् य पूरा जितने भी शब्द है सब य से चालू होते हैं, आप देख लीजिए। और ऐसी स्तुति गजेंद्र ने भी की है, यस्मिन इदम यश्चेदम येनेदम यदम स्वयं यो अस्मात् परस्मात् च परस्तम प्रपद्ये स्वयं भुवम्। यही बात उसमें लिखा है कि यस्मिन, आपसे ये जगत चलता है, आप ही जगत के कारण है, आपसे ही जीवों में शक्ति प्रदान होती है, जीव आपकी ही शक्ति है, जितने भी कर्म करते हैं उसके फल देने वाले भी आप है, इसको रचने वाले, पालन करने वाले, ध्वंस करने वाले भी आप है, आप ही विश्व बने हैं, विश्व पूरा आप में है, ये इसका वर्णन है, सब आप है। यह इसका, इसको हिंदी में कहा जाए तो ऐसे है, अल्टीमेट स्रोत अहम सर्वस्य प्रभु, जो गीता में भगवान कहते हैं मैं ही हूं, मेरे से ही विश्व आया है, विश्व मुझ में है, मैं कण कण में हूं और सारे जीव मुझ में समाहित हो जाते हैं जब प्रलय के समय पूरा ब्रह्मांड है ना। तो ये प्रहलाद महाराज इस बात को जान रहे हैं 5 वर्ष के बालक। तो भक्ति सिद्धांत महाराज का तिरुभाव तिथि हमने मनाया, प्रभुपाद जी प्राय अपने गुरु महाराज का स्मरण करते रहते थे, प्रवचनों में लेक्चरों में याद दिलाते थे कि उनकी भक्ति भावना की कितनी निष्ठा थी। और प्रभुपाद जी इतने सफल हुए उसके पीछे उन्होंने बताया है कि मेरी गुरु की आज्ञा के ऊपर मेरी निष्ठा। इसलिए प्रभुपाद जी पूरे विश्व में सफल कृष्ण प्रचारक भक्त बन गए, गुरु की कृपा से, वैष्णव के अनुग्रह से। उन्होंने कहा था कि आप पाश्चात्य जगत में जाकर प्रचार करो, तो प्रभुपाद जी ने अपने जीवन का गुरु आज्ञा वचन लक्ष्य बना लिया। और हम लोग भी गाते हैं गुरु मुख करेंगे, पत्नी मुख, बच्चा मुख, बॉस मुख वाक्य, जो भी है गाएंगे गुरु मुख। ऐसे है, गाने में कुछ और है, करने में कुछ और चलता है हमारा। इसीलिए भगवत स्मरण नित्य रहता नहीं, और कृष्ण नहीं है तो माया, माया अधिकार हो ही जाता है, क्या करें। इसलिए पुनः आना पड़ता है भक्तों के संग में, शास्त्र के संपर्क में, वैष्णव की सेवा में, तब फिर ऊपर आ जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज की स्तुति के ऊपर वाक्य प्रारंभ करने से पहले हमें एक शिक्षा, एक मैसेज और ग्रहण करना है। हमारे पद्यावली नाम का एक ग्रंथ रूप गोस्वामी ने लिखा है, आप लोग जानते होंगे, उसमें श्री माधव सरस्वती का एक सुंदर श्लोक उसने डाला है। वो कहते हैं कि कई लोग कर्मकांड में लगे रहते हैं, कई लोग ज्ञान कांड में, कोई लोग ध्यान में, कोई तपस्या में, कोई यज्ञ में, कोई अलग अलग जगह, सब चेतना में लगे हैं। कौन? अपने आप को धार्मिक कहने वाले, बाकी नास्तिकों की बात ही छोड़ो, कुछ आधे 99% तो मानते ही नहीं भगवान को, और उसमें 1% बचा, उसमें 50% लोग कहते कि सब भगवान है, और उस 50% में 1% के 50 के 50 में लोग कहते कि हम ही भगवान, हम भगवान, ऐसे है। उनमें से भी 1% बचा है जो धार्मिक है, और वो भी इसमें पड़े हैं कर्मकांड में, ध्यान। कोटि ज्ञानी मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, चैतन्य महाप्रभु कहते करोड़ों 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 ज्ञानियों में, गीता में भी भगवान इस बात को कहे है ना, सातवें अध्याय में कैसे कहे हैं, मनुष्याणाम, हाँ, करोड़ों करोड़ों मनुष्य में ज्ञानी यतना तथा नाम अपि सिद्धा नाम, कोई एक वासुदेव रीति आगे भी कहे है सब महात्मा। तो हमें उस श्लोक में कहा गया है कि जानन अपि न जान्यते, जानते हुए भी हम नहीं जान रहे हैं। क्या नहीं जान रहे हैं? उदाहरण देते हैं कि रसम परिवेशयन्ति दर्वी गुर्वी न स्पृशेत। जैसे क्या होता है, एक कड़छा होता है ना, आप लोग अभी सब्जी खाते हैं, दाल सब्जी जूस, उसमें क्या परिवेशयन्ति, क्या बोलते हैं आप उसको, कड़छा बोलते, क्या बोलते हमारे चम्मच, बड़ा हमारे गुजराती में चमचा कैसे, चमचो चमचो, ओके चमचो चमचा है ना, उससे लेकर हम देते हैं, और उसमें टेस्ट होता है, सब्जी में टेस्ट होता है, दाल में टेस्ट होता है, रस होता है ना, और वो जो खाने वाला है वो रस का आस्वादन करता है, तीखा है, मीठा है, कड़वा, अम्बल अम्बल, जो भी 6 प्रकार के रस है, चतुर्विधा भोजन, चतुर्विधा है ना, चतुर्विधा भगवत प्रसाद ग्रहण करते हैं हम। लेकिन जो एक कड़छा है वो उस रस को नहीं जानता है, जबकि वही दे रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है खट्टा है मीठा। हम उस कड़छे की तरह भगत बन चुके हैं कि हम दूसरों को भक्ति दे रहे हैं कर, लेकिन हमको उसका टेस्ट आनंद से कोई मतलब नहीं है, अभी तक टच ही नहीं हुआ, स्पर्श ही नहीं हुआ, जबकि हम कर रहे हैं उसी में। वो जो कड़छा होता है किसमें, सब्जी में पूरा डूबा होता है, और उसके द्वारा दूसरे को भी मिलता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता, उसको कोई लेना देना नहीं है उस रस से। हम लोग ऐसे निरस हो चुके हैं, रसिक शेखर कृष्ण के भक्त होते हुए भी ऐसे नहीं है ना, हमें अपना चॉइस करना है, रस सब्जी। चैतन्य महाप्रभु क्या गाया है भक्ति विनोद ठाकुर ने, गौर प्रिय चाक सेवने, चैतन्य महाप्रभु को जो सब्जी प्रिय था, कौन सा सब्जी प्रिय था, वापरा व्यंजन, सुक्ता शाकादि भाजी, नलिता कुष्मंडा सुक्ता सब्जी है ना, बंगला भक्त बुझते बारी सुक्ता केने बोले छे हमारे गुजराती में ऊंधी बोले छे, ऊंधी ऊंधा वाली नाखे, तो सुक्ता सब्जी है, सुक्ता, हाँ सुक्ता सब्जी। तो बहुत उस पांच प्रकार के जो आइटम मिलित बना, चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय था। तो भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं कि गौर प्रिय चैतन्य महाप्रभु को जो सब्जी प्रिय है सेवन है, उसको वो सब्जी उनका भोग लगाया हुआ हमको मिल जाए, जीवन सार्थक मान, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु के प्रसाद मिल जाए, जीवन सार्थक मान। तुलसी देखी जुड़ाय प्राण, माधव तोषणी जानी। तुलसी देख रहे हैं ना, माधव की प्रिया है। भक्तिनाथ ठाकुर कहते कि मैं तुलसी को देखता हूं तो मेरे प्राण व्याकुल होने रखते कि ये कृष्ण की प्रिया है, कृष्ण के चरणों में इनका वास है और कृष्ण चरण भक्ति देने में ये महासमर्थ है, फिर भी हमको कोई आकर्षण नहीं हो रहा है, उनको हो रहा है लेकिन हमको ऐसे ही चक्कर दो तीन मार देते हैं सुबह सुबह मंगला में कभी आते हैं तो। लेकिन जो भाव होना चाहिए, जो अट्रैक्शन आकर्षण, इसकी महिमा जानते हुए भी उस कड़छे की तरह हम हो चुके हैं, जबकि तुलसी जी की कितनी महिमा है। लेकिन हम जब वैष्णव से सुनते हैं तो कुछ क्षण, आधा घंटा, एक घंटा, एक दिन, फिर वही के वही भूल जाते हैं, महिमा से अवगत हो जाते हैं। और रहना चाहिए नित्य स्मरण। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर, तुलसी को देखता हूं तो मेरे प्राण जुड़ा है, क्यों? क्योंकि ये माधव की प्रिया है। गोपीजन भी इनका इनको प्रणाम करती है। रासलीला में वर्णन है कि जब राधा आदि, ललिता आदि, विशाखा आदि गोपियां शरद पूर्णिमा को ढूंढ रही थी तो कृष्ण रास से अंतर ध्यान हो गए, तो उस समय भगवान कृष्ण को ढूंढती हुई गोपियां कृष्ण विरह से व्याकुल वृंदावन के वन में विचरण कर रही है, और विचरण करते को देखा, नगोद प्लक्ष बड़े बड़े अश्वत्थ आदि वृक्ष होते हैं ना, उन वृक्षों को देखा तो वो भाव से इतनी उन्मत्त थी कि वो वृक्ष को पूछती है कि हे वृक्षराज, आप बड़े ऊंचे हैं और आपको पूरा वृंदावन दिखता है, हम तो नीचे है आपके मूल में है, तो क्या आपको कृष्ण दिख रहे हैं? वृक्ष से पूछती है। तो हवा आती है ना, वृंदावन की लहर है हवा, तो वृक्ष के पत्ते ऐसे हिलते हैं, तो बोलते देखो सखी ये मना कर रहा है, इसने नहीं देखा। वो कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन यही सखिया भाव में, क्योंकि कृष्ण से उन कृष्ण ने उनका मन चित खींच लिया है, तो उसे कहते कि मना कर रहा है, चलो दूसरे वृक्ष के पूछती है। तो बड़े बरगद के वृक्ष के पास जाकर, क्या आपने देखा है? क्योंकि आप कई सालों से वृंदावन में रहते, साधना करते, क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी क्या बोलते उसको, शाखाएं हो चुकी, क्या बोलते उसको जो बड़ी बड़ी लंबी नीचे वड़वाई बोलते हम गुजरात, क्या बोलते उसको, होती ना बरगद के वृक्षों में जटा जैसा बने, बोले ये वृक्ष राज मुनि है, इसकी इतनी बड़ी बड़ी जटा, ये कृष्ण तत्व को निश्चित जानते होंगे, कृष्ण ने देखा है, वो भी मना कर, इसने भी नहीं देखा। आगे जाके फिर उसने तुलसी के वृक्ष को देखा, जूही चमेली चंपा आदि लताओं से पूछा, जब तुलसी को देखा, तस्मात तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। गोपीजन कहती है कि हे तुलसी, हे परम कल्याणमयी, त्रिभुवन का मंगल कल्याण करने वाली और गोविंद के चरणों की प्रिया, हम आपसे पूछती है कि क्या आपने गोविंद को देखा है? ललिता पूछती है, विशाखा पूछती है, तो तुलसी जी क्या बोलेगी? होता है उस सब रूप में कुछ बोलेगी नहीं, ऐसे तो वृंदा रूप में पूरी अरेंजमेंट वही करती है, लेकिन वृक्ष रूप में तो कुछ कहेगी नहीं, तो उसके भी पत्ते हिलते हैं हवा से, तो बोलते ये नहीं बताएगी, ये जानती है फिर भी नहीं बताएगी, क्योंकि हमारी सौत है। फिर ललिता कहती है कि ये इनके साथ ही नित्य रहती है और हम जाएगी तो उसको डिस्टर्ब होगा, इसलिए नहीं बताएगी, इसको पूछना बेकार है। तो क्रोध मान में, प्रेम में क्रोध हो गया, ये भी एक भाव है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गोपीजन भी तुलसी की याद करती है, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर भी याद करते हैं, और इन सब्जी पत्रम पुष्पम आदि श्लोक, इसके द्वारा क्या हो रहा है? स्मरण हो रहा है, कृष्ण लीला का चिंतन स्मरण हो रहा है, और इससे ही हमारा अज्ञान अविद्या माया नष्ट होगा। ये सार वस्तु बताया जा रहा है। फिर आप जानते हो कि कृष्ण से विश्व आया, कृष्ण से भी वो न जाने तो भी कोई बात नहीं, अगर आप कृष्ण नाम संकीर्तन कृष्ण लीला सुन रहे हैं तो ज्ञान तो अपने आप हो जाएगा, जो ये संसार का तत्व ज्ञान है वो तो कृष्ण कृपा से हृदय प्रकाशित हो जाएगा, गुरु वैष्णव कृपा से। हमें सार ग्रहण करना है, हमारे आचार्यों ने हमें सार वस्तु दिया है और उस पथ पर हम चल रहे हैं। तो हमारे इस हृदय प्रकार हृदय पटल में हृदय आकाश में जो अंधकार छाया हुआ है अविद्या का अज्ञान का, उसको दूर हटाने में ये भागवत गुरुजनों के वाक्य कृष्ण की लीला एक सूर्य और चंद्र की समान है जो प्रकाशित करते हैं हमारे ज्ञान को। प्रहलाद महाराज के ऊपर विवेचन दिया जाए तो ये बात निश्चित है कि अद्भुत उनकी श्रद्धा है, भगवान के प्रति एक अनुपम निष्ठा है और उनका स्मरण अखंड है, अखंडित स्मरण है प्रहलाद महाराज का। और उसके कारण आयु भले अल्प हो, आयु में भले छोटे हो, लेकिन पूर्ण तत्ववेता हो गए हैं प्रहलाद महाराज उस सभा में, जिस सभा में देवता खड़े हैं, भगवान खड़े हैं, उस सभा में उनके वचनों की महिमा बताई जा रही है। और इसके वचन सुनकर हमें भगवत तत्व ज्ञान होता है। तो ये भगवान की स्तुति भागवत में सबसे बड़ी स्तुति यही है, 34 श्लोक है स्तुति में, और इतना लंबा स्तुति किसी देवता का किसी भगत का नहीं है, प्रहलाद महाराज का है इतना बड़ा स्तुति भागवत में। बहुत सारी स्तुतियां हैं, प्रार्थनाएं हैं, कुंती महारानी की प्रार्थना, भीष्म देव की, हस्तिनापुर की, स्त्रियों की, अलग अलग जगह भागवत में बहुत प्रार्थनाएं हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज की सबसे बड़ी प्रार्थना है और पूर्ण प्रार्थना है। एक एक वस्तु का उन्होंने सुंदर निरूपण किया है, अगले श्लोकों में बताया गया है। प्रभु जी हमको कह रहे थे कि आगे के एक दो श्लोक लीजिएगा, क्या ले एक दो श्लोक, एक ही शब्द काफी है प्रहलाद महाराज के स्तुति का, अगर हमें समझना हो तो, जीवन में उतारना हो तो। बालस्य नेह शरणम पितरो नरसिंह, हे नरसिंह भगवान, लोग कहते हैं कि बालक का पालन पोषण उनके माता और पिता करते हैं, क्या करते हैं वो, क्या माता पिता हवा बनाते हैं, क्या शरीर माता पिता ने बनाया है, किडनी माता पिता ने अंदर फिट किया है, जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क फिट करते हैं ऐसे नहीं, क्या हृदय उन्होंने फिट किया, और फिट करने के बाद क्या माता पिता चलाते हैं, नहीं। लोग कहते हैं कि माता पिता पालन करते हैं, सारे जगत के मातरो पितरो नरसिंह त्वमसी, आप है, क्योंकि आप शरीर बनाए हैं, आप जीवन दे रहे हैं, आप प्राण को चला रहे हैं, गवित गतिशील कर रहे हैं, नहीं तो माता पिता हो तो वो भी बच्चा हरे कृष्ण हो जाता है कि नहीं, गोद में, माता की गोद में भी वो नहीं चाहते हुए भी, डॉक्टर रोकते, माता पिता रोकते, कुछ भी करो नहीं रहेगा, नरसिंह ना चाहे तो नहीं रहेगा ना, तो कौन पालन करता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं आप करते हैं पालन, नरसिंह देव सच्चे माता पिता आप है और बालक आपकी शरण में है, लेकिन जो भव सागर में गिरे हुए है अज्ञानी जीव, ये नहीं जानते हैं इस आपको, आपकी भक्ति के बारे में, और इसीलिए वो आपकी उपेक्षा कर देते हैं कि नहीं हम चलाते, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम हो जाते, लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हम ऐसे नहीं, हम जानते हैं कि आपसे यस्माद यतो यरहि येन च यस्य यस्माद, ये विश्व आपसे चलता है और विश्व के आत्मा आप है, इसमें प्राण आप डाल रहे हैं, आप न हो तो ये विश्व पूर्ण समाप्त हो जाएगा, कुंती महारानी ने भी ये कहा है, अथ विशेष विश्वात्मन विश्वमूर्ति स्व केचु में स्नेह पाश इमम चिंदी दृढ़ विष्णुषु पांडुषु। कुंती महारानी कहते पूरे विश्व के ईश्वर, विश्व के आत्मा, विश्व के स्वामी आप है। इसी बात को प्रहलाद महाराज भी यहां पर कह रहे हैं कि आप ही करता भरता पालन पोषण करता सब आप है। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से अपने तात्पर्य में बताया है कि तीनों गुणों की ये जो त्रिगुणात्मयी माया है ये भी भगवान के अधीन कार्य करती है, और सारे ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जितने भी जीव है ये सब माया के अधीन है, और माया किसके अधीन है, कृष्ण के अधीन है, सारे जीव माया के अधीन है और माया कृष्ण के अधीन है, और ये मायागत जीव कर्म के अनुसार अध मध्य उध लोकों में भ्रमण करते हैं, अधो गच्छन्ति तामसा, है ना, गीता में भगवान कहते हैं उध्व कर्म करने वाला ऊपर लोकों में जाएगा, रजोगुणी तिष्ठति राजसा वो मध्य लोक में, और कर्मणा देव नेत्रेण, प्रभुपाद जी कपिल देव का श्लोक याद करा रहे हैं कि अपने कर्म के कारण किसी गर्भ में वो जाता है और शरीर प्राप्त करता है, कर्मणा देव नेत्रेण जंतु, जंतु माने जीव, अलग अलग योनियों में घूमता रहता है, और घूमते रहने के बाद भी कृष्ण परमात्मा रूप में उनके हृदय में रहते हैं और वे ही शक्ति प्रदान करते हैं, और उसकी शक्ति लेकर अपनी इच्छा से वो कर्म करता है। शक्ति भगवान की है, जीव की अपनी शक्ति, शक्तिमान भगवान है, जीव स्वयं शक्ति है कृष्ण की, और फल को भोगता है, जन्म मृत्यु में चक्र काटता है। लेकिन किसी सौभाग्य से, गुरु वैष्णव कृपा से वो आपकी शरण में आ जाए, प्रहलाद प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो आपकी शरण में येन केन प्रकारेण गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी, जो आपकी शरण में अगर आ जाए तो इस भवसागर से पार हो जाएगा। तो परम धर्म गीता का ये हुआ, सर्वधर्मान परित्यज, सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में, ये भगवान स्वयं आज्ञा देते हैं। और प्रभुपाद जी ने एक अंतिम तात्पर्य में एक बात और सुंदर लिखी है, तो वहां पर वे कहते हैं कि सारे जीव अपने कर्मों के अनुसार मायाग्रस्त त्रिगुणात्मक माया में जब कर्म करते करते उनकी चेतना कभी रजोगुणी, कभी तमोगुणी, कभी सत्वगुणी होती रहती है, और ऐसे कर्मों के अनुसार प्रकृति जो उनको स्थूल और ये सूक्ष्म शरीर दी है, स्थूल शरीर आप जानते होंगे पंच महाभूत, और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार, ये दोनों प्रकृति की उपज है जीव के पास, आत्मा के पास, और ये जो सूक्ष्म शरीर है उसमें एक अहंकार जो है, मन है, उससे वो एक अज्ञान की सृष्टि होती है, जो ये मान लेता है कि अहम मम मैं ही ये शरीर हूं, उपाधि ग्रस्त हो जाता है। जबकि जीव का स्वरूप क्या है, कृष्ण दास, हमारा स्वरूप क्या है, कृष्णदास, लेकिन उसके आगे महाप्रभु ने एक छोटा शब्द डाला है, नित्य दास, संडे संडे दास नहीं है हम लोग, नित्य दास, हम लोग कैसे दास है, संडे संडे दास, नित्य बोला, नित्य मतलब समझते ना आप लोग, प्रतिदिन हर रोज, देखिए हम छोटे शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन नहीं तो हम लोग क्या, हम नित्य सेवा कर रहे हैं कृष्ण की, नित्य कृष्ण के दर्शन, नित्य कीर्तन, नित्य भागवत श्रवण नहीं हो रहा, कीर्तनीय वहां पर भी सदा एक छोटा डाल दिया, गीता में भी भगवान कहते कीर्तन माम, उसके आगे क्या डाला, सतत, सतत कीर्तयन्तो मा, तो सतत सदा ये होता है, नित्य बड़े छोटे शब्द है लेकिन इसकी बड़ी महिमा है, भगवान है ना बहुत बुद्धि से बोलते हैं चारों, नहीं तो जानते हैं कलयुग वाले फिर भी नहीं मानते हैं, तो इतना स्पष्ट बोला हूं लिखा हूं फिर भी ये लोग पूरा नहीं ग्रहण करते, तो नित्य दास है हम, और नित्य दास होते हुए हम भगवान सच्चिदानंद है, हम उसी के अंश है, तटस्था शक्ति हम भी सच्चिदानंद है, और हमारा स्वरूप है उनकी सेवा, लेकिन अहंकार और अज्ञान से हम एक उपाधि, एक दूसरा शरीर ग्रहण कर लिए हैं जिनको अपना स्वरूप मान चुके, इसीलिए नारद भक्ति पंचरात्र का श्लोक प्रभुपाद जी यहां पर कोटेशन दे रहे हैं कि आपने जितनी भी उपाधियां है, उपाधि जानते हैं ना, मैं आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूं, आई एम महाराष्ट्र, मैं मराठी हूं, गुजराती छू, मैं मारवाड़ी हूं, सब है हम, फिर उसके आगे चलेंगे तो मैं स्त्री हूं, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, उसके अलावा मैं पिता हूं, माता हूं, चाचा, ताऊ, ताऊ, चाचा, चाचू, जो भी, ये सब क्या है, उपाधियां, हम कृष्ण दास है, लेकिन हम लोग कुछ और उपाधियां पहन के बैठे, तो भक्ति किसको कहते, सर्व उपाधि भी नहीं, सब उतारो, एक एक टोपिया जो पहनी है, एक एक कवर अज्ञान निकालो, हम जो है उसके पास, उसको पहचानो, स्वरूप को पहचानो, और ऐसा उपाधि ग्रस्त अज्ञान में रहने वाला मूढ़, जिसको गीता में कहते हैं भगवान, ऐसा जीवात्मा को जब पूछा जाता है तो बिंदास दूसरी दूसरी पहचान बताता, अपना स्वरूप भूल चुका, और कैसे है, अच्छे है, और पूछते ना लोक में कैसे है, अच्छे है, क्या अच्छे है, पूरे पागल है, और आप अच्छे कह रहे हैं अपने आप को, क्योंकि पागल का एक डेफिनेशन है कि वो अपने आप को नहीं जानता, पागल मीन्स जो अपने आप को न जानते, हम है कृष्णदास, उसको हम नहीं जानते, तो एक बने ठने एजुकेटेड, क्या कहेंगे उसको, जेंटलमैन है हम जो अपने आप को नहीं जानते हैं, कहां जाना है ये नहीं जानते, कहां से आए हैं ये नहीं जानते, अपने आप को ही नहीं जानते और हम अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं। लेकिन यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि उस सारी उपाधि को नारद जी ने कहा कि हटाओ, अपने स्वरूप में आ जाओ। और उस स्वरूप क्या है, ऋषिकेण ऋषिकेश, तुम ऋषिक, ऋषिक माने इंद्रिया, ईश माने स्वामी, इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण के आप दास हैं। और उसकी इंद्रिया जो दी हुई उन्हीं की है और उनसे उनकी सेवा करो, ये आपका स्वरूप है, ये भक्ति है, इसी को भक्ति कहते हैं। और इस बात को प्रभुपाद जी अपना तात्पर्य पूरा करते हुए अंतिम बात एक और भी कहते हैं। भागवत का एक श्लोक है ना, मुक्ति, एक बड़ा प्रसिद्ध शब्द है लोक में, मुक्ति, मुक्ति चाहते हैं, मुक्त, मुक्त, मुक्ति माने जन्म मृत्यु से छूट जाना। लेकिन सुखदेव जी ने मुक्ति की परिभाषा बड़ी सुंदर बताई है, मुक्ति माने ये सारी उपाधि हटाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, स्वरूपेण व्यवस्थिति, स्वरूप है कृष्ण का दास, उनकी सेवा, उनकी भक्ति, और वह आप करते हैं तो आप मुक्त। और इसको भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने कैसे कहा है, इहा यस्य हरे दास्य कर्मणा मनसा गिरा। आप अपने कर्म से, मन से और वाणी से अगर भगवान की सेवा में लगे हैं तो आप जीते जी मुक्त है। निखिला, आपको मुक्त होने की जरूरत नहीं है, मुक्त ही है, कृष्णदास मुक्त ही होता है। अगर आप सेवा में लगे हैं मन चा वाचा कर्मणा, तो निखिलापी अवस्थाशु, रूप गोस्वामी कहते हैं सभी अवस्थाओं में आप जीवन मुक्त च उच्यते, आप मुक्त है, अर्थात माया आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी क्योंकि आप अपने स्वरूप में स्थित हैं। तो जब तक हम कृष्ण सेवा में नहीं है, कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं, तब तक हम अपने स्वरूप में नहीं है, और स्वरूप में नहीं है तो मुक्त नहीं है, और मुक्त नहीं है तो माया से वशीभूत बद्ध है। ये सिंपल ज्ञान बताया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी इस तरह अपना तात्पर्य यहां पर इजीली बहुत सरलता से कंपी करते हैं। विशेष रूप में सारे जड़ मूल अज्ञान को हटाने का उपाय कृष्ण भक्ति है, जहां कृष्ण तहां नहीं माया यदि, कृष्ण भक्ति। तो भगवद गीता मैराथन चल रहा है और हमें कृष्ण की कृपा भक्ति प्राप्त करना है ना उसका, और उसका रास्ता क्या है, कृष्ण की कृपा डायरेक्ट नहीं है, उनके प्रतिनिधि के द्वारा आती है, भक्ति भक्तों के द्वारा प्राप्त होती है। और उनके भक्तों की कृपा कैसे प्राप्त होगी, उनके आदेश, उनकी आज्ञा का हम पालन करेंगे। प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कहा कि आप हमारी मेरी बुक का अगर वितरण करते हो, भगवद गीता में भी भगवान ने कहा कि जो मेरा प्रचार है वो सब प्रिय है मुझे। और प्रभुपाद जी की द्वारा पूरी गुरु वैष्णव परंपरा की अनुकंपा, अनुग्रह, कृपा को हम खींच सकते हैं, अपनी ओर मोड़ सकते हैं, अगर हम उसकी आज्ञा का पालन करें। और क्या है उनकी विशेष आज्ञा, भगवद गीता का प्रचार करना, भगवद गीता को बांटना, कहना, पढ़ना, ये सब उसके प्रचार के ही अंतर्गत आता है। तो ये अभी चल रहा है मैराथन, चल रहा है ना दिसंबर, ये गीता जयंती गया, मोक्षदा एकादशी, उस उपलक्ष में पूरे इस विश्व में इस्कान के सभी भक्तों में एक होड़, एक प्रतियोगिता, कंपटीशन चलता है कि मैं फर्स्ट, मैं कुछ ज्यादा भगवान की सेवा करूं, ज्यादा गीता बांटू। और हम में से कुछ भक्त ऐसे है कि दयालु है, चलो भक्त लोग अच्छा बांटे वो आगे बढ़े, हम तो संतोष ही है, हम आगे, हम भक्तों के आगे नहीं आना चाहते तो ये हमारी उदारता नहीं है, ये हमारी मूर्खता है, या हमारा लेजीनेस, हमारी आलस कहिए, जो भी कहिए, हम उदार नहीं है, आलसी है इसका अर्थ। नहीं तो हम लोग कहेंगे नहीं भक्तों के बीच में नहीं आना, वो ज्यादा बात है, हम देखेंगे, दर्शन पवित्र करो, आपका गुण बहुत अच्छा है कि आपके दर्शन से आप तो कितना प्रचार करते हैं, और मैं प्रसाद लूंगा बस टाइम से प्रसाद लूंगा, कहीं भी रहूंगा प्रसाद जरूर लूंगा। ये भी एक भक्ति है, भक्ति में ठाकुर कहते प्रसाद सेवन करीते है। लेकिन वास्तव में कृष्ण का प्रसाद अर्थात कृष्ण की कृपा, गुरुजनों की कृपा, उनकी वाणी सेवा से होगी, है ना, उन्होंने जो बताया है उसको हम जीवन में धारण करें और उस पथ पर चले। तो इसके लिए सुंदर अवसर है हम लोगों के लिए, इस भक्तों के लिए, प्रभुपाद जी की कृपा खींचने का, भगवान की कृपा प्राप्त करने का, ये गीता जयंती मैराथन। क्योंकि पूरा विश्व जो है, सुविधाएं बहुत है, सब लोग दुखी क्यों है? कृष्ण भक्ति के बिना। दुख का कारण ये नहीं है कि पानी नहीं आ रहा है, लाइट नहीं है, ये सब बाद में है। आप यहां जन्मे इसलिए है, अगर वहां होते तो ना पान की चिंता नहीं। तो मूल समस्या का हल निकालना है, जन्म मृत्यु का हल निकाल दीजिए, वो सब अपने आप निकल जाएगा। तो हम लोग छोटी छोटी समस्या सुलझाने में मेन समस्या पड़ी हुई है यहां पर, जन्म मृत्यु। कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया गया, आप सभी जानते हैं, धर्म क्षेत्र में। लेकिन बड़ी सेना थी ना दोनों पक्ष में, विशाल वाहिनी, वाहिनी माने सेना, 18 अक्षणी सेना लगी हुई थी। तो हम लोग भी ऐसे ही है, ये घर गृहस्थी, संत लोग बताते कुरुक्षेत्र से भी भारी युद्ध है ना, घर गृहस्थी, दो बच्चों को संभाल लेना और एक माता जी, उसको अगर आप संभाल लेते हैं तो बड़ी बात है एकदम, आज के युग में है ना, उसको संभाल लेना मतलब बहुत। और उसमें व्यवहार, उधर जाना इधर जाना, बॉस को संभालो, किसको कितना, किस सबको संभालो, एक चिंता की, एक तरफ चिंता की, चिंता जानते ना उपाधि, और एक तरफ दुख क्लेश, उसकी सेना लगी हुई, हम बीच में है, दोनों तरफ सेना है, चिंताओं की और इच्छाओं की सेना, एक के बाद एक मन में इच्छाएं उड़ती रहती, ये करूं वो करूं ये करूं, इधर जाऊं ये संभालू, और चिंता, ये नहीं हुआ, ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये इसका एंड नहीं है। शायद कुरुक्षेत्र की सेना का तो एंड भी हो गया 18 दिनों में, और हमारा तो सेना बढ़ रही है, इच्छा भी बढ़ रही है, चिंता भी बढ़ रही है, कम होने की अपेक्षा लग रहा है आपको, बढ़ रही है? आप लोगों की नहीं बढ़ती होगी क्योंकि आप तो कृष्ण भक्त है ना, कृष्ण भक्तों की नहीं बढ़ती। अगर बढ़ रही है तो समझिए कि हमारी भक्ति में कुछ गड़बड़ है। अगर नहीं हो रहा है ऐसे, प्रतिपदम पूर्णा अमृत आस्वादन नहीं हो रहा है, तो कहीं फॉल्ट है, कहीं पर डिस्टर्ब हो रहे हैं हम, कुछ गड़बड़ चल रहा है, हमें अपना स्वयं जांच लेना पड़ेगा। और फिर उसके लिए गुरु, शास्त्र और साधु, तीनों की प्रभुपाद जी ने कहा ना, शरण लेनी पड़ेगी। तो चिंता और इच्छाओं की एक सेना है, विशाल सेना, जो बढ़ती रहती है, और उसके बीच में हम जीवन युद्ध कर रहे हैं, माया के सामने झुलस रहे हैं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हृदय में अज्ञान है, स्वरूप का अज्ञान है, परमात्मा भगवत तत्व का अज्ञान है, और भगवान के साथ अपने जो संबंध है उसको हम भूले हुए। इसीलिए भगवान ने ये गीता का ज्ञान प्रकाशित किया, अमृत ज्ञान, जो जीव को अमरत्व, अपना स्वरूप प्रदान करेगा। एक भक्त ने बड़ा सुंदर, महाराज जी व्याख्या करते हैं कि भगवान कृष्ण जब गोकुल में यशोदा के भय से भाग रहे थे, है ना, माता ने छड़ी लिया, तो हम लोग दामोदर मास में देखे, लीला सुने आप सभी, भाग रहे यशोदा भियो लुखलाध्वमानम, और माता के हाथ में छड़ी है, तो भगवान भाग रहे कि कहीं सटाक से एक पड़ न जाए, है ना। तो एक भक्त उसको देख रहा है, क्योंकि भगवान के जो भक्त है और हृदयेश विलोकयंती, है ना, भगवान की लीला का चिंतन उनके हृदय में, मानस पटल में होता रहता है, नित्य स्फुरित हो, तो देख रहा है, तो देखते देखते देख रहे कि भगवान के भाग रहा है, माता यशोदा पीछे भाग रही है, तो कहते माधव, वो डायरेक्ट लीला में देखते हुए उस लीला में प्रवेश कर रहा है वो भक्त, और कहते माधव, कृष्ण का एक विश्व प्रसिद्ध नाम है ना, माधव, माधव माधव, दौड़ो मत, हे माधव, मा धाव, धाव मतलब रनिंग वे, मा मतलब नो, दौड़िए मत आप, रुक जाइए, गिर जाएंगे, लग जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि गिरूंगा तो थोड़ा लगेगा, अगर रुक जाऊंगा तो जोर से लगेगा पीछे, क्योंकि माता के हाथ में छड़ी है ना, तो वो थोड़ा लगेगा, ये थोड़ा ज्यादा लगेगा, इसलिए हमको दौड़ने दीजिए, मत रोकिए हमको। अरे आप दौड़ेंगे तो दौड़ते दौड़ते कृष्ण यशोदा के आंगन से बाहर अब निकल रहे हैं, यशोदा के आंगन से गोकुल में, गोकुले ब्राजमानम दौड़ रहे हैं, सुंदर लग रहा है भगवान, सचिदानंद विग्रह है, यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्णम, माता यशोदा ने सुंदर कुंडल पहना है तो हिलडुल रहा है कुंडल, और भगवान के गाल मरकत मणि के समान चमचम चमकते हैं, तो उस कुंडल की आभा रिफ्लेक्शन गाल में होता है और उससे गाल और चमकते हैं भगवान के, और सुंदर बाल आवृत हो चुके हैं मुखमंडल पर, अरुण बिंब फल लाल लाल होठ है भगवान के, और कमल नयनम आंखें कमल के समान ऐसे अद्भुत बाल मनोहर रूपम, और दौड़ रहे है भय से। तो भक्त कह रहा है कि अगर आप ऐसे नंगे, क्योंकि गोकुल में तो भगवान चप्पल नहीं पहनते हैं, और भय के कारण टाइम भी नहीं रहा उसको, कभी कभी हमको भी प्रसाद के कारण चप्पल बाद में पहनेंगे, ऐसे नो टाइम, चप्पल का भी टाइम नहीं है अभी, तो भगवान अभी भय में है कि क्या चप्पल पहना, भाग रहा है, था ही नहीं। तो कहते माधव तब पदय आपके चरणों में छाले पड़ जाएंगे, आप इस तरह भाग रहे हो गोकुल की कंकर जमीन में। तो कहते हैं कि पढ़ने दो, छाले नहीं पड़ेंगे तो पीठ पर पड़ेंगे, कहीं तो पढ़ना है, क्योंकि हम ऐसा कर्म किए हैं, छाले तो पड़ने हैं, तो कम से कम पैर में पड़े हुए अच्छा है पीठ की अपेक्षा। भाग रहे माता यशोदा, बोले अब भी नहीं रुक रहे हो, भक्त चिंतन कर रहा है लीला का कि ठीक है आप नहीं रुकेंगे, आपको भागना ही है, और गोकुल में जहां भी जाएंगे आपके शरीर से इतना प्रकाश निकलता है कि छुप नहीं पाएंगे, इसलिए माम हृदय। अब आप एक काम करिए, माता यशोदा के भय से आपको बचना है, उस छड़ी के मार से बचना है, तो आप हमारे हृदय में आ जाइए, क्योंकि यहां अंधकार है, करोड़ों जन्मों से मैं अज्ञान अंधकार को अपने हृदय में, और आपको अभी अंधेरे की बहुत जरूरत है, आपको अभी, क्योंकि आपकी सचिदान आप तो चमक रहा है और प्रकाश में आप दिख जाएंगे, तो आपको अगर छुपना है तो मेरे हृदय जैसा अज्ञानमय कोठरी गुफा आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं बरसों से छुपा के रखा हूं अज्ञान, आप आ जाइए इधर, दोनों का काम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मेरा अज्ञान नष्ट हो जाएगा और आप मार से बच जाएंगे, आप माता यशोदा के मार से बच जाएंगे, और आप आएंगे तो मैं माया के मार से बच जाऊंगा, क्योंकि मैं भी मार खा रहा हूं सत्वगुण से, क्यों कहते ना पैरों से मारती रहती है माया, तो मैं बच जाऊंगा अगर आप प्रवेश करेंगे। तो भगवान भक्तों का सुनते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान भक्तों के बात को सुनने के लिए ललाहित रहते हैं, और उनके भाव के अनुसार सार उनसे व्यवहार भी करते हैं। गीता में वो कहे भी है, जो भक्त मेरे पास आता है तांस्तथे, मैं उनके समक्ष हूं जाता हूं। तो हम भी भगवान को इसी तरह, जैसे माता यशोदा साक्षात इस लीला को चिंतन या नहीं करनी, वो तो देख रही है, उस लीला में पार्टिसिपेंट हो रहा है उनका, तो उसी लीला को सुनना या कहना हमें भी उस तरह में ले जाता है, और भगवान लीला के रूप में, नाम के रूप में हृदय में आते हैं और हमारे अज्ञान को हटा देते हैं। यही कृष्ण कथा के विषय में लिखा है ना सुखदेव गोस्वामी ने, कि शोक मोह सुनताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्थो ही भद्राणी विदनोति स्वयदम सताम। ये कृष्ण कथा जब हृदय में आएगी तो हृदय का अज्ञान अंधकार सब नष्ट हो जाए। तो कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण, इसमें कोई अंतर, अभिन्न तत्व है और एक असर से काम करते हैं। इसलिए भगवान नाम को, भगवान लीला को हमारे हृदय में स्थिर करना है, और उसका यह उपाय बताया जा रहा है प्रहलाद महाराज के द्वारा, कि आपके शुद्ध भक्तों की संगति में उनके श्रीमुख से उनके आपकी लीला और उस आपके उपदेश को जब भक्त ग्रहण करता है तो इस त्रिभुवन में इस माया जगत को पार करके वो आपके श्री चरणों को सदा के लिए प्राप्त हो जाए आता है। ये सरल और श्रेष्ठ विधि महाभागवत आचार्य प्रहलाद महाराज उस देवताओं की सभा में बता रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। तो विशेष रूप में प्रहलाद महाराज के प्रत्येक श्लोक बहुत ही आस्वादनीय है, चिंतनीय है। लक्ष्मी भी जहां से वापस हट गई, सभी देवता जहां परास्त हो गए वहां पर प्रहलाद जी ने नरसिंह के मन को हर लिया, शांत कर दिया बिल्कुल नरसिंह भगवान को, क्रोध से पूर्ण आवेश में थे, पूर्ण शांत विग्रह हो गए, उग्रम वीरम से शांताकारम हो गए, भक्त की स्तुति से। अद्भुत वर्णन है पहले के श्लोकों में, प्रहलाद महाराज निर्भय होके जा रहे हैं हार लेकर, ब्रह्मा जी ऐसे जा रहे हैं ऐसे स्तुति करे तो हम आदि देव, आधा श्लोक बोल भी गए डर से, और प्रहलाद महाराज बिंदास हार लेकर जा रहे हैं नरसिंह देव के सामने, क्योंकि उग्र रूप था। और नरसिंह देव जब प्रहलाद को देखे, भक्त भगवान जब भक्त को देखते हैं तो प्रेम स्वाभाविक उमड़ता है, उनको उठा लिए गोद में बिठा लिए, और भक्ति थे इसलिए निर्भय थे। भक्त का लक्षण ही होता है अभय, अभय चरण अरविंद। हम लोग आप लोग की इसी स्थिति है, अगर मान लीजिए यहाँ पर नरसिंह प्रकट हो जाए, आप में से कोई गोद में नहीं जाएगा, बाप रे भगवान, पहले तो खा न ले कहीं, है ना, ऐसे बाहर आप दूर से ठीक है नरसिंह दे, यत नरसिंह बाहिरे ज्यादा नरसिंह, हृदय थोड़ा थोड़ा, सामने बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम उतने स्तर पर नहीं है, हम उस स्तर पर नहीं है, जब ब्रह्मा उस स्तर पर नहीं है हमारे आचार्य वो डर रहे हैं, सब डर रहे, लक्ष्मी जी भी श्री संप्रदाय वालों को भी पीछे हटना पड़ेगा, ब्रह्म संप्रदाय लक्ष्मी संप्रदाय, ये भक्त केवल प्रहलाद महाराज निर्भय होके जा रहे हैं, और भगवान नरसिंह देव सिंह वेश में है, सिंह शेर मुख है तो उससे चाट रहे हैं, सिंह अपने बच्चे को चाटता है ना जैसा ऐसे प्रहलाद महाराज के हृदय में रोमांच हो रहा है, क्योंकि भगवान के सच्चिदानंद वपु का स्पर्श पाकर वो धन्य हो रहे हैं। और उसके बाद नीचे उतरे करबद्ध अवस्थाशु, दोनों हाथ जोड़े, और महाभागवतो असुर सुखदेव गोस्वामी, ऐसे तो मूल नारद जी कथा कह रहे हैं राजसूर्य सभा में, तो प्रहलाद महाराज को क्या कह रहे हैं, महाभागवत, और उसके बाद क्या कह रहे हैं, असुर, एक तरफ महाभागवत और दूसरी तरफ, ये दोनों कैसे एक फीट हो सकता है, एक तरफ क्या कहा जा रहा है, स्तुति करने लगे, कौन स्तुति करने लगा, महाभागवत, और दूसरा असुर, असुर कभी महाभागवत हो सकता है या महाभागवत कभी असुर हो सकता है, ये दोनों का कम्युनिकेशन है क्या, मेल है, प्रहलाद महाराज में है दोनों। तो असुर शब्द की व्याख्या वहां पर बहुत सुंदर की है हमारे चक्रवर्ती पाद आचार्यों ने, असुर शब्द का अर्थ केवल दानव दैत्य ही नहीं होता, असुर शब्द का अर्थ संस्कृत में क्या होता है, असु माने क्या होता है, प्राण, असव, असुर शब्द का संस्कृत में क्या होता है अर्थ, प्राण, आत्मा, प्राण, और र माने रमनते, जो हमेशा प्राणों में अर्थात प्राणों के प्राण कृष्ण में रमता है उसको असुर कहते हैं। असुर का अर्थ केवल दैत्य ही नहीं होता, वहां पर टीका में लिखा गया है कि असुर माने, असु माने प्राण, और प्राण थे असुर, प्रहलाद महाराज के प्राण क्या थे, परमात्मा भगवान कृष्ण, और उसी में जिनका चित्त वृत्ति रमता, रईति रमनते, इसलिए उनको असुर कहा गया। तो महाभागवत थे क्योंकि कृष्ण में ही तुष्यंती च रमनती थे, ऐसे असुर थे, असुर माने केवल राक्षसी ही नहीं होता, ऐसे असुर की परिभाषा पद्म पुराण में बहुत सुंदर दी है ना, कि जो भगवान की भक्ति में या तो उनकी बात मानते हैं वो सब देव है, देव भूता लोके अस्मिन, दो प्रकार की सृष्टि है, तो विष्णु भक्त भक्ता सुरा प्रोक्ता, जो विष्णु के भक्त है उसको सुर कहते हैं और जो उनके भक्त नहीं है उनको असुर, ऐसे दिया गया, लेकिन यहां पर असुर की परिभाषा ऐसे दी है कि जिनका प्राण कृष्ण में, जिनका चित मन रमता है, ऐसे महाभागवत असुर सुंदर स्तुति करने लगे, जिनकी स्तुति नारद जी एज इट इज कह रहे हैं उस राजसूर्य सभा में, उस स्तुति को सुखदेव गोस्वामी गंगा तट पर कह रहे हैं, उसी स्तुति को नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी कह रहा है, पता नहीं जहां जहां भागवत होता है वहां पर यही स्तुतियां होती है, और आज हम भी प्रभुपाद जी की कृपा से उसी स्तुति शब्दों का आस्वादन कर रहे हैं, तो उसी फल को पाएंगे जो फल प्रहलाद को मिला है, जिस फल के सुखदेव जी अधिकारी है, उसी परंपरा में उसी भाव में हम चलेंगे तो हम भी उसी पद उसी पथ को उसी स्थान को प्राप्त करेंगे। इस सरल श्रेष्ठ प्रोसेस विधि बताया है हमारे आचार्यों ने, ज्यादा कुछ न बताते हुए हमें उसी पथ पर चलना है। मैं केवल इस श्लोक का थोड़ा बाहरी रूप से, और प्रभुपाद जी के तात्पर्य को संक्षेप में बताया। विशेष रूप में आप सभी भक्त बहुत कुछ जानते हैं, सार सबके लिए एक ही है जो हमें हमारे महाप्रभु ने कहा है, त्रिनादपि सुनिचेना तरो रवि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। इस श्लोक को जीवन में उतारना है, भक्तों की सेवा में रहना है, भागवत श्रवण करना है, और युग धर्म हरिनाम संकीर्तन स्वयं करना है और प्रचार भी करना है। जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, ये सब उसमें आ गया। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम। ओके, कोई प्रश्न है आप लोगों का? बताइए प्रभु जी। हाँ, ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे बताया। हाँ 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 सही है। वो जो 6 अध्याय है पद्म पुराण के उत्तरखंड के, ये भागवत महात्म्य को प्रकाशित करते हैं। और भागवत पृथ्वी पर सूत जी ने जैसे कहा कि भगवान जब स्वधाम में गए तो पुराण अर्को अधुनोदित, भगवान ने ये भागवत धर्म भागवत के आश्रय पर रखा। तो भागवत भगवान का स्वरूप है और भगवान के भक्ति तत्व को, भगवत तत्व को पूर्ण रूप से प्रकाशित करता है। तो उसकी महिमा बताते हुए वहां पर सुद गोस्वामी कहते हैं, व्यास जी ने जो लिखा है पद्म पुराण उसमें, कि अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत को सुनता नहीं है तो जीवश्चव, वो जीते हुए भी मुर्दा है। क्या मुर्दा है? मतलब यही जैसे कहा कि रस शून्य, अर्थात वो प्रेम भक्ति ज्ञान शून्य रहेगा, उनका जीवन केवल भोगमय और पशु जैसा रहेगा। तो जीते हुए भी, भागवत में भी कहा गया है सॉरी देवहूति प्रसंग में, जीवन अपि मृतो ही स। अगर कोई व्यक्ति जिसके कर्म धर्म के अनुसार नहीं है और धर्म में वैराग्य नहीं है और वैराग्य में सत्य नहीं है और सत्य में होते हुए भी अगर आपकी शरण में नहीं है तो व्यक्ति जीवन अपि मृतो ही, वो जीते जी मरा हुआ है। ऐसे कई जगह श्लोकों में कहा गया है, जैसे भागवत में भी कहते हैं कि जिनकी जिनका सर कृष्ण के सामने नहीं झुकता वो भार है, आंखें कृष्ण का दर्शन नहीं करती वो मोर पंख के समान है, जीव दादुरी का एव है ना, मेढक की समान है। तो ऐसे निंदात्मक श्लोक कई दिए गए हैं जो इस बात को प्रेरणा या उत्साह देते हैं हम भक्तों के जीवन में। एक जगह तो पद्म पुराण में जिस श्लोक की आप बात कर रहे हैं उसके आगे पीछे श्लोकों में यह भी लिखा है कि कोई व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी से निकले मुख से निकला हुआ ये अमृत भागवत कथा नहीं सुनता जीवन में तो अपनी माता को केवल कष्ट देने के लिए आया है। बस 9 महीना अंदर कष्ट दिया और बाहर आके जीवन भर कष्ट दे, क्योंकि बिना भागवत पढ़े ना तो उनका हित होगा ना उनके कुल का उद्धार होगा। यहां तक कह दिया गया, जननी दुख भाजा, जननी को केवल दुख देने के लिए वो प्रकट हुआ है। प्रकट नहीं कहेंगे प्रकट शब्द कृष्ण के लिए, जन्म हुआ है उनका। क्यों? कौन व्यक्ति जो भागवत नहीं पढ़ता? अब देखिए इस बात को हम लेने जाएंगे तो 99 लोग उसी में आ जाएंगे, 99 वेद को पढ़ने वाले भी उसी में आ जाएंगे क्योंकि वो केवल उसी में स्थित। तो ऐसे श्लोक प्रभु जी बताए जाते हैं वेदों में नेगेटिव रूप से। जैसे भगवान और भागवत की महिमा दो तरीके से होती है, अन्वय भाव से और व्यतिरेक भाव से, नेगेटिव पॉजिटिव इंग्लिश में कहेंगे, तो ऐसे करना चाहिए और ऐसे नहीं, ऐसे तो उसमें ये नेगेटिव बात बताई जाती है कि भाई अगर वो नहीं कर रहा है तो मरा हुआ ही है, क्योंकि वो ज्ञान शून्य रहेगा, स्वरूप चेतना शून्य रहेगा, भोग में रहेगा और अंत नरक दुर्गति को प्राप्त होगा, तो मरा हुआ ही है। अप्राणस्य देहस्य मंडनम, प्रभुपाद जी इसको ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि वो उनका श्रृंगार ऐसा ही है है ना। भगवत भक्ति हीनस्य, अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, और भक्ति माने क्या, श्रवणम कीर्तनम, यही ना, भागवत पढ़ना सुनना हरिनाम करना, तो उसके अलावा जो भी तप कर रहा है या ज्ञान कांड जो भी कर रहा है वो मृत शरीर का श्रृंगार मात्र हो रहा है, बस उसका कुछ हित होगा नहीं। तो मैं तो ज्यादा नहीं कहते हुए इतना ही समझिए कि ये व्यतिरेक भाव से भगवान की महिमा, भागवत की महिमा बताई जा रही, और यथार्थ सत्य भी दिख रहा है कि भागवत नहीं पढ़ेगा तो उसको भक्ति नहीं होगा, क्योंकि भागवत से भक्ति प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, भक्तों के चरित्र से हृदय शुद्ध होता है, और विशेषकर भगवान की कृपा मिलती है, और ये नहीं मिल रही तो जीते जी मरा हुआ, सांस लेते हुए भी मुर्दा ही है। ऐसे मुर्दे से कितना डर लगता है, कहीं कब्र से उठ जाए एक आदमी या तब कितना डर लगता है ना, तो यह तो जीते जी मुर्दा ही घूम रहे अगर भक्तिहीन है तो, ऐसे कहा गया है संतों में शास्त्रों में। ठीक है, और कुछ बताइए कमलोचन प्रभु जी। यस, और एक प्रश्न है, ओके बताइए। हाँ हाँ, तो विचार क्यों गलत आते हैं बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका विचार गलत क्यों आते हैं? संग दोष के कारण, प्रकृति के गुणों के प्रभाव के कारण। परमात्मा हमारे हृदय में है और वे अपने सच्चिदानंद स्वरूप में है, और गीता में वो कहते हैं गतिर भरता प्रभुर साक्षी, मैं सब तुम्हारे हृदय में हूँ हृदय अर्जुन, मैं तुम्हारा गति भरता साक्षी। प्रभुपाद अभी बोल रहे थे, तात्पर्य में लिख रहे थे कि मतस्मृति, मेरे से ज्ञान आता है, मेरे से सब आ रहा है अपन। तो शक्ति के स्रोत परमात्मा है, लेकिन इच्छा जीव की है, हमारी है। और जब हम प्रकृति भगवान की त्रिगुणात्मक माया में जब हम कुछ ऐसे दृश्य रजोगुणी तमोगुणी देखते हैं सुनते हैं, तो उसका मन के ऊपर कामात क्रोधो संगात विषय जैसे हो ना गीता में, ऐसे हम प्रभावित हो जाते हैं और ऐसी इच्छा करते हैं, और ऐसी इच्छा में कर्म करते हुए कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। तो परमात्मा दो वृक्ष सखाया, दो जैसे उपनिषद कहता है ना, दो पक्षी एक वृक्ष में, परमात्मा और आत्मा है हम लोग। परमात्मा ही हमको बल बुद्धि ज्ञान सब दे रहे हैं, लेकिन हम जो गलत विचार कर रहे हैं वो प्रकृति के गुणों के संग दोष के कारण और हमारी स्वेच्छा भोग वासना के कारण, उसमें परमात्मा निर्लिप्त है बिल्कुल, वो कुछ नहीं करते। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि बिजली हमारे आती है, उसका ठंडा करना गर्म करना हमारा है काम, शक्ति सरकार दे रहे हैं। तो भगवान से ही हम, अगर भगवान न चाहे तो ऐसे कहते ना एक पत्ता भी नहीं हिलता, वास्तव में नहीं हिलता। तो लोग कहते कि हम पाप हम थोड़ी कर रहे हैं, हम इस बार वृंदावन परिक्रमा कर रहे थे, सत्य घटना है। तो वृंदावन परिक्रमा कई भक्त हमारे साथ में थे कार्तिक में, तो एक माता जी, तो वहां पर गोपालाष्टमी होता है और नवमी अक्षय तिथि है, तो उस समय दो परिक्रमा मथुरा वृंदावन की जॉइंट परिक्रमा होती है, लाखों लोग करते हैं राजस्थानी ब्रजवासी सब, बहुत भीड़ रहता है, मेला जैसा लगा रहता है। तो उसमें बहुत सारी माताएं भी परिक्रमा कर रही थी, तो वहां पर सब सेवक लोग सेवा, कोई खिचड़ी बांटता है, ऐसा होता ना परिक्रमा मार्ग में सब सेठ लोग सेवा करते। तो एक दो तीन जगह पर चाय बट रही थी, चाय सेवा चाय सेवा चाय सेवा, सुबह सुबह हम लोग जा रहे थे तो रोकते थे परिक्रमा में, प्रभु जी चाय सेवा चाय पीजिए चाय पीजिए ऐसे। तो हमारे हरे कृष्ण वो तो चलते रहते हैं, लेकिन कई लोग पीते थे वहां पर चाय। तो एक प्रक हमारे साथ में था, उन्होंने पूछा कि प्रभु जी क्या ये सेवा है, ये चाय देना इसको सेवा कहा जाएगा ऐसे पूछा हो। तो हम सिंपल बता रहे थे उसको कि उनका भाव है सेवा का, लेकिन ज्ञान नहीं है, सेवा के नाम पर पाप ही हो रहा है ये। तो एक माता जी सुन ली जो चाय पी रही थी बीच में, उन्होंने कहा क्या बोल रहे हैं आप? बोला नहीं कुछ नहीं बोला मैं। क्या कुछ नहीं बोला? आप बोले कि चाय पी रहे हो पाप है, मैं बोला ऐसा कुछ संत लोग बताते हैं, मैं ऐसा कहा वो इतना ताड़क रही थी तो मेरी हिम्मत नहीं थी बोलने की। मतलब ऐसा कुछ लोग बताते हैं, संत लोग क्या बताते हैं, हम चाय पी रहे हैं तो परमात्मा पी रहे हैं, परमात्मा तो परमात्मा हमारे हृदय में तो वही पी रहा है, हम थोड़ी पी रहे हैं। बाप रे। तो मैं कहा अच्छा परमात्मा पी रहे कहां लिखा है, गीता में लिखा है कि नहीं, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में है कि नहीं, मैं बोला है, तो हम पी रहे मतलब वही पी रहे। मैं कहा दंडवत प्रणाम माता जी, आप इससे क्या बहस करना है, इसे क्या बहस किया जाए, बताओ समझे। अब देखो गीता का आधार लेकर वो कह रहे परमात्मा चाय पी, परमात्मा चाय पी रहे, हमने पी रहे। अब इनको क्या वो कैसे समझे, ये लोग समझ भी नहीं सकते ऐसी बुद्धि वाले। तो बड़ा आनंद, पूरी परिक्रमा में यही फिर चाय ही टॉपिक चला कि क्या रॉन्ग है कैसे सही है। लेकिन बात जो है हम भक्तों को पता होनी चाहिए कि नहीं परमात्मा हृदय में है, शक्ति के स्रोत वही है, वो हमारे साथ करुणा करके विराजते हैं, लेकिन इच्छा जीव की है और उसका फल भी जीव को भोगना पड़ेगा। परमात्मा निर्लिप्त है वो, क्योंकि वो रहते हुए भी पृथ्वी है ना, मत्स्यानि सर्वभूतानि, वो सब हृदय में है, या तो योमा पश्यति सर्वत्र, सब में वही है, लेकिन फिर भी वो नहीं है, ये भगवान का स्वरूप है। तो आपका प्रश्न जो है प्रभु जी कि परमात्मा हमारे हृदय में है फिर भी हम अज्ञान में है, तो इस बात का उत्तर हमारे एक आचार्य हुए श्री श्रीधर स्वामी, जिन्होंने भागवत की बड़ी सुंदर टीका लिखी है, चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रमाणित आचार्य माने जाते हैं, उन्होंने एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है जिसको रूप गोस्वामी ने सिलेक्ट किया अपनी पद्यावली ग्रंथ में, और वहां पर वो कहते हैं कि परमात्मा आप करुणा सिंधु है, जीवों के सुयद मित्र अपने आप को गीता में बोलते हैं आप, और उसी कृपा के कारण और मित्रता के कारण हृदय में भी रहते हैं, और जीव नरक में जाए स्वर्ग में जाए पेड़ पशु मनुष्य कोई भी योनि में जाए उनके साथ रहते है ना, परमात्मा साथ ही रहते आत्मा के, फिर भी जीव का अज्ञान या जीव की माया तो आप दूर कर नहीं पाए, आप साथ में है करुणा भी है, लेकिन जीव का जो अज्ञान है, जीव की जो ये वासना है, जीव का ये संसार बंधन है, ये तो बढ़ता जा रहा है जबकि आप साथ में है। उस परमात्मा से आपका नाम स्वरूप कोटि गुना अच्छा है कि जीव पर हरे कृष्ण आ जाए, जीव का अज्ञान मिट गया। तो हरि से बड़ा हरि का, आप परमात्मा है लेकिन आपका जो परमात्मा से भी आपका नाम जो है वो आपसे भी अति करुणामय नाम विग्रह है कि जीव के अग्र भाग पर, जीव के अग्र भाग पर अगर आ जाए तो हृदय का अज्ञान दुर्वासना संसार बंधन कट के गिर जाएगा, और आप वो अगर जीव न ले, परमात्मा जीव के हृदय में बैठे रहे संसार बंधन होने। तो सीधे स्वामी कहते कि अभी ये तो मैं आपका वर्णन किया प्रभु, अभी आप बताइए कि आप परमात्मा अच्छे कि आपका नाम अच्छा, बड़ा कौन ये हाँ? आप बताइए, मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता, आप बताइए। मतलब वही परमात्मा अंतर से हमें ज्ञान देंगे अगर हम भगवान की ओर मोड़ना चाहे, चैत्य बपु गुरुशा चैतन्य है ना भागवत में, कि वही चेतन गुरु रूप में हमें निर्देशन करते हैं, बाहरी रूप से गुरु रूप में प्रतिनिधि में हमें ज्ञान देते हैं और अंदर से परमात्मा रूप में गुरु बनकर हमें ग्रहण कराते हैं, लेकिन इच्छा हमारी होनी चाहिए ना, जीव की इच्छा स्वतंत्रता उसके ऊपर है। परमात्मा सब जगह शक्ति देंगे, पाप में भी पुण्य में भी, आप उस शक्ति का कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं आपके ऊपर है, और उसी के अनुसार फल भी भोगना पड़ेगा, उसी के अनुसार दंड भी पाएंगे और उसी के अनुसार सदगति भी पाएंगे, आपके ऊपर है। तो विशेष रूप से हमें इस बात पर समझना होगा कि भगवान ही शक्ति के स्रोत है ये बता रहे हैं, और वास्तव में वही भगवान परमात्मा रूप में जब परण क्रिया करते हैं तब शास्त्रों का गुरु वाक्य वैष्णव आज्ञा जो है उसको जब हम सीरियस लेते तो परमात्मा की कृपा है हम पर, लेकिन हम हमें परमात्मा को अनुकूल करना पड़ेगा। हमारे इस्कॉन के वर्तमान आचार्य माने जाते हैं, बहुत भागवत कथा करते हैं, परम पूज्य राजा गोविंद महाराज आप जानते होंगे, तो एक उदाहरण देते इस बार, दो पक्षी है परमात्मा और आत्मा है ना, लेकिन वो शिरोही में इनके यहां राजस्थान में कथा हो रही थी तब बता रहे थे कि जीव जो है वो 63 क्या कहते हैं 36 हाँ 36 होता है ना, तीन का मुंह इधर छह का ऐसे करके बैठा है, अभी परमात्मा कृपा करके 6-9 बन गए, इधर मुड़ मुंह किए उनका 3 बने तो ये 33 बना हुआ है। अब जबकि संबंध होना चाहिए 63 का है ना, दोनों ऐसे एग्जाम ऐसे मुहावरा दे रहे थे, समझा रहे थे कि जीव को चाहिए कि परमात्मा को देखे, उनके अनुकूल हुए, उनकी आज्ञा को समझे और उस अनुसार करे। लेकिन ये जो परमात्मा तो कृपा करके जीव को देख रहे हैं, लेकिन ये जीव रूपी पक्षी भोगोन्मुख है, विषयों में भोगों में लिप्त है, इसमें परमात्मा क्या करे। अब उसी परमात्मा कृपा करके फिर प्रकट होकर प्रतिनिधि के रूप में गुरु भेजते हैं, है ना। वही तो आते हैं गुरु रूप में, वही तो वेदों का शास्त्रों का ज्ञान दिया है। लेकिन जीव जो भोगोन्मुख है, ना तो वो सुनता है ना मानता है, और अज्ञान में रहता है, और फिर भ्रमवश कहता है कि परमात्मा नहीं करा रहे, अथवा वही पाप करा रहे। इनका अज्ञान है, क्योंकि भगवान तो त्रिगुणातीत है, चिन्मय है, वो इसमें इसमें पूरे लिप्त नहीं होते हैं। न मे कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्म फलेस्पृहा, गीता में स्पष्ट कहे इति यो भी जानाति। वो अगर कोई जान ले तो वो भी कर्म बद्ध से न बद्ध है, वो भी कर्म में नहीं गिरेगा, क्योंकि भगवान कर्म से परे है। जीव कर्म करता है और भोगेगा वही दुख भी वही पाएगा। तो भगवान होते हुए भी हम भगवान को नहीं देख रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। देखिए हमारा दुर्भाग्य, देखिए वैष्णव, हम मानते हैं कि ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरे नजदीक है, ये मेरे एकदम आत्मीय है। भगवान जितने क्या हृदय में आकर घुसे हैं वो लोग हमारे, जिसको आप संबंधी मानते हैं, जो वास्तव में अपने हैं और जो हमें शक्ति दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और हमारे वास्तविक सुयद है, हितेशी है, और पर हृदय में बैठे हैं, हम उनको देख नहीं रहे, ना तो मान रहे ना उनकी सुन रहे, और हम भोगों में लगे हैं अज्ञान में। यही हमारा दुर्भाग्य। कब ये सौभाग्य आए कि हम भगवान की ओर मुड़े, गुरुजनों की वाणी को सुने, संतों के शास्त्रों के निर्देश अनुसार जीवन जिए, तब उसी परमात्मा परम कृपालु हो जाएंगे, तब अज्ञान हटा देंगे। परमात्मा जहां है वहां अज्ञान नहीं है, लेकिन जीव माया बस अज्ञान में रह रहा है। तो जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, कृष्ण सचिदान रूप में उसकी आज्ञा माने, उनका नाम ले, उनकी कथा सुने, उनका प्रसाद खाए, तो अज्ञान नहीं रहेगा। लेकिन वो कुछ न करे तो अज्ञान कभी नहीं जाएगा, ये सत्य बात है। ओके, ऐसे ही उत्तर दिया जाता है, आप समझे हो कितना पता नहीं, क्योंकि हम भी इतना नहीं समझे, ना समझ बहुत ज्यादा नहीं समझा सकता, लेकिन समझदार ना समझ होते समझाए तो भी समझ जाता है। तो आप सभी कृष्ण नाम संकीर्तन अगर सीरियस लेते हैं तो दिव्य ज्ञान हृदय, और आप हरि नाम नहीं जप रहे हैं, गुरु आज्ञा शास्त्र आज्ञा नहीं मान रहे हैं, तो फिर हम क्या, आप क्या, ब्रह्मा क्या, साक्षात कृष्ण भी आपका कुछ होने वाला है, ये सत्य बात है। क्योंकि जैसे नाम जप करेंगे उसी तरह दिव्य ज्ञान, हमारी इंद्रिया शुद्ध होगी, ऋषिकेण ऋषिकेश जब लगेगी तब शुद्ध इंद्रिया, और शुद्ध इंद्रिया चिन्मय भगवान को समझ पाएगी, नहीं तो जड़ बुद्धि देह जड़ इंद्रिया कुछ नहीं समझ पाती है, भगवन्मुख रहेगी। तो हमें कृष्ण नाम संकीर्तन करना है, कृष्ण कथा सुननी है, और उसी के बल पर हमारी इंद्रिया पवित्र शुद्ध होगी, तब हम सारे वेदों के तत्व को, भागवत के रहस्य को, गीता के ज्ञान को हृदय गम्य कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये सरल विधि है, भक्तो चमे सखा चेती, ये तद रहस्य दे तद उत्तम, उत्तम रहस्य तब सज पाएंगे, जब शरणागत हो जाएंगे, भक्त हो जाएंगे। और भक्त मीन्स जो भक्ति करे, भक्ति मीन्स हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्णा कृष्णा हरे। ओके, धन्यवाद।
हरे कृष्णा, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, उसके पहले कुंडल कृष्ण प्रभु को आभार व्यक्त करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भावनगर में बहुत सुंदर प्रचार करते हैं प्रभु जी, और आप सब लोगों को आशीर्वाद भी देना चाहिए उनको, ताकि वो शीघ्र भावनगर में भी एक भव्य मंदिर बनाए। तो वैसे एक सूचना इस प्रकार है, अगले से अगले रविवार यानी 20 तारीख को, 20 दिसंबर को एक बड़ा भव्य रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है खांदीवली में। तो हमेशा इस प्रकार मेरा विचार था कि हम श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा मंदिर में मनाते हैं, ये बारिश के मौसम में पड़ता है कि नहीं, है कि नहीं। और अनेकों लोग आना चाहते हुए कुछ लोग आ नहीं पाते, और ये रथ यात्रा का उत्सव अनेकों जगह अलग अलग जगह भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है। वैसे उसी दिसंबर 19 तारीख को लुधियाना में रथ यात्रा है, जो विश्व का सबसे बड़ा रथ यात्रा हो गया, वो पूरा शहर भाग लेता है उसके अंदर। पता नहीं कितने लोग जानते हैं लुधियाना रथ यात्रा के बारे में। ऐसा हर रोज 3 महीना पहले से हर रोज पेपर में आता है उसके बारे में, कुछ ना कुछ आधा पेज आता है, आज भगवान का ऐसा ड्रेस बना, ऐसा इसका ऐसा हुआ, अभी जगन्नाथ जी आ रहे, ऐसे अनेकों प्रकार का जो खबर है 3 महीना पहले से पूरा तैयारी होता है, और पूरा शहर भाग लेता है उस दिन, उस शहर को छुट्टी है। तो ऐसे रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में पारंपरिक तरीके से हो रहा है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से विश्व भर में ये प्रचार हुआ है। अभी भारत में उत्साह के साथ अनेकों जगह के जो स्थानीय भक्त है, जैसे मान लीजिए मीरा रोड के है, भाईंदर के है, और थाना के है, विरार के है, अभी वो जुड़ के रथ यात्रा में रथ यात्रा को आयोजन कर रहे हैं। वैसे कांदीवली के कुछ भक्त हैं जो बहुत उत्साह के साथ इस रथ यात्रा को आयोजन करने में लगे हुए, पिछले 2 महीने से वो बहुत भागमभाग कर रहे हैं। वैसे वो भक्त इतने मंदिर से इतना जुड़े नहीं है, अपने संस्था से कृष्ण भक्ति से उतना जुड़े, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उत्साह के साथ इस रथ यात्रा को आयोजन करने में वो तत्पर है। तभी हम सब भक्तों को उनको साथ देना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कि ये 20 तारीख का रथ यात्रा को शोभायमान बनाएं आपकी उपस्थिति से। तो मीरा रोड से उस दिन रविवार है, रविवार का तो सुबह का प्रोग्राम होता ही है, उस दिन घर मत जाइए, वापस इधर रुक जाइए, और 1 बजे से बसेस का आना जाना चालू रहेगा इधर से। तो जो लोग ऐसे ही पहुंच सकते, इसका स्थान इस प्रकार है, आप बोरीवली स्टेशन में उतर सकते हैं, कांदीवली स्टेशन में उतर सकते हैं, उधर से वेस्ट में आप पोईसर रोड जानते हैं, पोईसर जिमखाना, उसके बाजू में और एक क्लब है कमला विहार स्पोर्ट्स क्लब, उसके सामने एक बड़ा सा ग्राउंड है, ये ग्राउंड का नाम ही भागवत सप्ताह ग्राउंड है। तो उधर से रथ यात्रा शुरू होगी, और कांदीवली में एसवी रोड से होते हुए बहुत प्रोमिनेंट लोकेशन से होते हुए जा रहा है। वैसे हमारा प्रचार बहुत ज्यादा है बोरीवली में, दहिसर में, भाईंदर में, अनेकों जगह, लेकिन कांदीवली में पहली बार इस प्रकार का बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं पर्सनली निवेदन करूंगा आप सब लोग उत्साह के साथ उस भाग ले। ये रथ यात्रा का जो कार्यक्रम है केवल उसी दिन के लिए नहीं है, एक दिन पहले भी है, एक दिन पहले कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम है यानी शनिवार शाम को, और बच्चों का कार्यक्रम भी है, और रविवार को रथ यात्रा है, और अगले दिन यानी सोमवार से लेके अगले रविवार तक यानी 21 तारीख से लेके 27 तारीख तक हमारा उधर पंडाल रहेगा, भव्य पंडाल बन रहा है, उसमें सुबह से रात तक पूरा कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम इस प्रकार है, सुबह जो है 6 बजे मंगल आरती होगा, 6:30 बजे नगर संकीर्तन, और 6:30 से 7 बजे तक हम लोग जपा वगैरह करेंगे, और 7 बजे से लेके 8 बजे तक हम लोग गुरु पूजा वगैरह करते हुए 9 बजे तक भागवतम क्लास होगा, और 9 बजे सबके लिए ब्रेकफास्ट प्रसादम होगा, उसके बाद 10 बजे से 1 बजे तक खता होगा, फिर वापस 3 बजे से 6 बजे तक खता होगा, बाद में 7:30 से 9:30 बजे भगवगीता का कोर्स होगा, 9:30 बजे हर रोज ड्रामा होगा, और सबके लिए प्रसाद का आयोजन है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो आप सबको निवेदन है कि ये पूरा जो 7, 8, 9 दिन का समझ लीजिए, शनिवार से लेके अगले रविवार तक 19 तारीख से लेके 27 तारीख तक दिसंबर तक पूरा कांदीवली में अपना सत्र बना के रखें, ताकि हमारा भी कल्याण हो, और साथ साथ में आपकी उपस्थिति से उधर नए लोग जुड़ेंगे तो उनको ही उत्साह आएगा। ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा क्या होता है, अनेकों लोगों को लाभ प्राप्त होता है, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। तो सुबह का जो भागवतम है कुंडल कृष्णपुर उस समय रहेंगे तो पूरा हर रोज भागवतम क्लास सुबह देंगे, और जो भागवत कथा है वो लाल गोविंद प्रभु देंगे, और शाम का क्लास मैं स्वयं दूंगा जो भगवगीता क्लास, और रथ यात्रा के दिन तो निश्चित रूप में आपको उपस्थित रहना है। बहुत सारे हैंडआउट्स उधर है, वैसे बहुत सारा नहीं है, 5,000 है, जितना चाहिए उतना आप लेके जाइए, अगले हफ्ते और लेके आएंगे आपको लिए, और जो पोस्टर्स भी है बड़े बड़े पोस्टर्स दिखाएं, वी गॉट बिग बिग पोस्टर्स लाइक दिस। हाँ, तो ये पोस्टर्स आप क्या कर सकते हो, अपने सोसाइटीज में लगा सकते हैं, आप इधर उधर में चिपकाइए, बहुत वैल्यूबल है, मगर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है इसलिए आपको अच्छी तरह से सबको निमंत्रण देना होगा। मैं पिछली बार अनाउंसमेंट किया था कि जब आप अपने घर में किसी बेटी का शादी होता है तो कैसे बांटेंगे कार्ड को, हाँ बहुत सावधानी से बांटेंगे ना, है कि नहीं, ऐसे रास्ते में ऐसा दे दिया आए तो 10 बांट देना, उसको 10 बांट देना, ऐसा करते हैं नहीं करते है कि नहीं। तो वैसे बहुत सावधानी के साथ आप में से प्रत्येक भक्त को कम से कम 10 भक्तों को तो कम से कम लेके जाना देके आना चाहिए अपने बिल्डिंग से। हाँ तो आप 500 इधर है, हाँ ठीक है 10 भक्तों लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा उधर 5000 हो जाएगा है कि नहीं। तो उधर से भी और लोग आएंगे तो हम चाहते हैं कम से कम 15-20 हजार लोग तो कम से कम रहे उधर रथ यात्रा में। और भी अगले हफ्ते आपको और जो उधर जिस दिन 56 भोग लगेगा उसका भोग का जो टोकरी वगैरह आपको दे देंगे नेक्स्ट वीक। इस बार व्यवस्था नहीं हो पाया तो आप अभी से हैंड आउट्स वगैरह लीजिए और पूरा उसका वितरण कीजिएगा। तो ये हमारा निवेदन है। तो इसके अलावा भी यूथ फेस्टिवल है 26 और 27 को हार्ट ऑफ माइंड कंट्रोल स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, उसका भी हैंड आउट्स उपलब्ध है, उसके बारे में आपको अगले जानकारी प्राप्त हो जाएगा। उधर भावनामा जी के पास बहुत सारा हैंड आउट्स है, पोस्टर्स है, वो सब लेके जाइए। और भी कुछ लोग उसमें सेवा में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा बड़ा भव्य मीटिंग है इस रथ यात्रा के बारे में, वो कमला विहार स्पोर्ट्स क्लब का बेसमेंट हॉल में बुधवार शाम को 7:30 बजे मीटिंग है। तो जो भी भक्त इस पूरा फेस्टिवल में उत्साह के साथ सेवा में भाग लेना चाहते हैं, आपका वो कहाँ पहुंचेंगे, बुधवार शाम को 7:30 बजे कमला विहार स्पोर्ट्स क्लब कांदिवली ईस्ट में, उधर बेसमेंट हॉल जहाँ हमारा प्रोग्राम होता है, हर हफ्ता प्रोग्राम होता है, तो उसमें आप आइए और अपना सेवाओं को हम अलग अलग सेवा बांटेंगे, उसमें आप भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए प्रयास किया, क्योंकि प्रथम बार मीरा रोड मंदिर में तो कार्यक्रम फेस्टिवल्स होते ही है, इस प्रकार का बड़ा भव्य तरीके से कार्यक्रम यह पहली कार्यक्रम है आउटसाइड द टेम्पल। तो आप सबसे निवेदन है कि इसमें पूर्ण तरीके से भाग लीजिएगा, जितने आप आपकी एक भक्त की उपस्थिति जो है 10 और नए लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, आपकी उपस्थिति ही हमारे ये उस फेस्टिवल का शोभा बढ़ा सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा। और इसका जो लिखा है उसका कैप्शन है सनातन धर्म की जागृति। ये फेस्टिवल का नाम है। तो आप सब लोग उसमें उपस्थित रहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। वैसे तो पिछली बार भी आप आए थे, पिछली बार हम थाना में रथ यात्रा किए थे 26 जनवरी को, उसका भी हैंड आउट वगैरह छप गया है, लेकिन उसको बाद में बांटेंगे, लेकिन 26 तारीख को भी अब रखिए। 26 जनवरी तो छुट्टी रहते हैं सबको, छठी है ना, तो उस दिन थाना में आपको आना है, लेकिन इधर जो है रविवार ही है 28 दिसंबर, उसमें आप पूरा भाग ले सकते हैं। हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद कमलोचन प्रभु को, और इसके साथ साथ हम सब आभार व्यक्त करेंगे इस ग्रेस कुंडल कृष्ण प्रभु का हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत सुंदर महोत्सव का आयोजन के बारे में आपको सूचना दिया जगन्नाथ जी, तो बैठे हैं हाथ फैला करके आओ आओ, लेकिन जो नहीं आ पाते हैं तो जगन्नाथ जी स्वयं जाएंगे उनको दर्शन देने के लिए, कृपा देने के लिए। तो इस उस समय भी सभी भाग लीजिए, सेवा लीजिए। आते रविवार 13 तारीख को जो प्रसाद बनाने का और वितरण का सेवा है, हिज ग्रेस अचिंत्य चक्र प्रभु जो भाईंदर के हैं लेकिन दहिसर ग्रुप में अपना काउंसलिंग चलाते हैं, जो दहिसर में वर्धमान में, उन भक्तों के द्वारा है। तो सभी 13 तारीख को समय पर आकर यह सेवा प्रारंभ करें, और 12 तारीख शनिवार को एकादशी है, तो सभी से निवेदन है कि एकादशी व्रत का पालन कीजिए। जो प्रतिदिन मंगला आरती नहीं आ सकते हैं, कम से कम एकादशी को मंगला आरती भी आए और इस व्रत का पालन करें। सभी के लिए प्रसाद है, जिन भक्तों ने कूपन प्राप्त कर लिए वे डायरेक्ट जा सकते हैं, जिन्होंने नहीं प्राप्त किए वे कृपा करके कूपन लेकर जाएंगे। और विशेषकर जो मैराथन चल रहा है, जैसा प्रभु जी ने भी बताया, मैराथन चल रहा है एक महीने के लिए, तो सभी भक्तों से निवेदन है कि प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में प्रभुपाद जी का कृपा प्राप्त करने के लिए सभी भक्त उत्साह के साथ भगवद गीता का वितरण में भाग लें। यहां से जो भी कोई भगवद गीता प्राप्त करना चाहता है, डायरेक्ट भगवान के चरण कमलों से स्पर्श हुआ भगवद गीता प्राप्त होगा, तो यहां से भी ले जा सकते हैं। और भगवद गीता वितरण में सबको भाग लेने के लिए विशेष प्रार्थना है, निवेदन है। हरे कृष्ण।
श्याम जी का प्रोग्राम है मैक्सस मॉल में, तो वहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत जरूरत है 10-15 लोगों को, क्योंकि वहाँ पे जो है ना मैक्सस मॉल है ना, मैक्सस मॉल
भाईंदर में,
हाँ श्याम जी का प्रोग्राम है कुछ, श्याम जी वो मारवाड़ी लोग होते हैं ना श्याम जी,
कुछ उसमें बहुत, हरे कृष्णा।
बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत
अभी से चालू है,
शाम को रहेगा,
आज शाम को भाईंदर में भी श्याम प्रचार मंडल वालों का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो वहाँ भी स्टॉल लगाएंगे, तो भाईंदर के भक्तों से खास निवेदन है कि वहां स्टॉल लगाकर गीता वितरण करें और दूसरे भी भक्त इसमें भाग ले सकते हैं।
महाप्रसाद बोलिए तो प्रभु जी, महाप्रसाद
हरि बोल हरि बोल, इधर आ, भागता किधर है,
बोल बोल बोल, चालू कर। महाप्रसाद गोविंदे रामो ब्राह्मणे वश्चवे स्वर्ण पुण्यतम राजन विश्वासमेव जायते शरीर विद्या जाल जरिंदी आता है काल जीवे फिर से सागरे लोग माया सुदूर मती टाटे देता तन सारे कृष्ण बड़ो दया मैं परिवारे जीवा जाए सो प्रसाद अंदिल बाई से अमित पाओ सिसी राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम दाके चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बृंद